मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 22 नवंबर 2019 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग लगातार भय नामक तत्व या मनोवैज्ञानिक स्थिति पर बात कर रहे हैं और काफ़ी विस्तार के साथ बातें कर रहे हैं। और कल मैंने उसी के तहत भय के कारणों के जानने की शुरुआत की थी। मैं इस बात को रिपीट करने के लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि अगर हम एक बार किसी भी बीमारी, किसी भी समस्या के कारण को जान लेते हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में डायग्नोसिस करना कहते हैं, तो ये मान करके चलिए कि फिर उसके उपाय तो हैं ही और हमें पता लग जाते हैं। और जब हम उपाय अप्लाई करते हैं तो सीधी सी बात है कि उस बीमारी से, उस समस्या से छुटकारा भी मिल जाता है। इसलिए जो भय के कारण हैं उन्हें मैं थोड़े से विस्तार के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और कल इसी के तहत मैंने काल्पनिक भय के बारे में बात की थी और उसके संदर्भ में मैंने सेठ जी और मुनीम की एक कहानी आपको सुनाई थी, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि अगर बातें कहानी के जरिए बताई जाएं तो शायद ज्यादा असर करती हैं। अब मैं इसी के एक अगले तत्व पर आ रहा हूं, अगले कारण पर आ रहा हूं, और यह सच पूछे तो सबसे बड़ा कारण है, कम से कम मैं तो इसे सबसे बड़ा कारण मानता हूं, और वह होता है अज्ञानता। इस अज्ञानता को आप सच पूछिए तो एक और भी नाम दे सकते हैं और वह है तार्किकता का अभाव। तार्किकता का अभाव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे देखिए कि अब हमने कल सेठ जी और मुनीम की कहानी सुनी। अब वो जो सेठ जी हैं वो अपनी जो सातवीं पीढ़ी के लिए चिंतित हो गए हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि उनमें तर्क शक्ति का अभाव है? किसी भी घटना को वो लॉजिकल तरीके से सोचने की स्थिति में ही नहीं है। अदरवाइज वो बाकायदे सोच सकते थे कि भाई उनका जीवन चल रहा है तो क्या उनके दादाजी ने, परदादाजी ने वो सारी संपत्ति छोड़ी थी जिसके आधार पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्होंने इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठी की है तो आने वाली जो 6 पीढ़ियां हैं वो क्या कुछ भी नहीं करेंगी, वो चुपचाप बैठी रहेंगी हाथ पर हाथ धरे हुए? तो स्वाभाविक रूप से अगर उनके पास तर्क क्षमता होती और उसका वो इस्तेमाल करते तो वो खुश हो जाते और भय से मुक्त हो जाते, क्योंकि वो सोचते कि भाई ठीक है, मैंने किया और इतना कुछ इकट्ठा किया है तो मेरी आने वाली पीढ़ी जो है वो मुझसे भी अधिक योग्य होंगी, वो और भी ज्यादा इकट्ठा करेंगे, मेरी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। तार्किकता का अभाव। मेरे पास एक मेल आया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे जब भी वो रात में उठते हैं या उठती हैं तो उन्हें भय लगता है। शायद मैंने इस बात की आपको आपसे थोड़ी सी चर्चा भी की थी। उन्हें लगता है जैसे कि इस हॉल में या इस कमरे में कोई व्यक्ति है, कोई भूत है या जो कुछ भी है, उससे उन्हें बहुत भय लगता है। और मजेदार बात यह है कि कभी भी कुछ नहीं हुआ और इसके बाद भी रोज भय लगता है। मैंने थोड़ा सा जोर देकर इस बात पर कहा है कि कभी भी कुछ नहीं हुआ इसके बावजूद रोज भय लगता है। अब इसको आप थोड़ी सी तर्क की कसौटी पर कस के देखिए। अगर रोज कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो होता, कम से कम कुछ तो इंडिकेशन मिलता, कोई आवाज आती, कोई थप्पड़ पड़ता, कोई धक्का लगता, कुछ ना कुछ तो होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो तर्क क्या कहता है? तर्क ये कहता है कि यदि कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब यह है कि वहां कुछ नहीं है। और अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो भय है वो तो काल्पनिक है, अतार्किक है, अज्ञानता वश है, तो हम अज्ञानता को कैसे दूर करें, कल्पना से कैसे मुक्ति पाएं? तो उसका एकमात्र जो आधार होता है वह तर्क ही होता है। और अगर तर्क के आधार पर यहां भी सोचा जाए तो इस भय से मुक्त हुआ जा सकता है कि सच यह है कि यहां कोई भी नहीं है जिससे मुझे डरने की जरूरत है, मैं अनावश्यक रूप से ही डर रहा हूं। और उसका प्रमाण यह है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, यह एक तार्किक निष्कर्ष होता है। आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने एक खंडहर की बात आपको बताई थी कि जब आप एक खंडहर से गुजरते हैं उसके सामने से तो किस तरह से अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और आपके जो भय के लेवल भी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए इसका कारण क्या है। वहां मैंने अंधेरे को जानबूझ करके आपके सामने रखा था, अंधेरे की स्थिति की, एक बिल्कुल अंधेरी रात है और इसके बाद फिर चांदनी रात है, इसके बाद दिन का समय है, फिर रात का समय है, और एक ऐसी सिचुएशन भी है कि आपके हाथ में टॉर्च है। तो हाथ में जो मैंने आपको टॉर्च दिया वो बेसिकली रोशनी दी है। तो अब आप देखिए कि जब हम दिन और रात की बात करते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के रात की बात करते हैं, तो वो प्रकाश और अंधकार की बात है, मूलतः प्रकाश और अंधकार की बात है। ये प्रकाश क्या है? आपको चांदनी रात में वह खंडहर कम खौफनाक लगता है। क्यों कम खौफनाक लगता है? चांदनी रात में ऐसी क्या बात हो गई? इसलिए कि चांदनी रात का जो प्रकाश है वो खंडहर के बारे में आपको कुछ बता रहा है, आपको ज्ञान बोध करा रहा है कि भाई अच्छा ये दरवाजा है, अच्छा ये है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है। और चूंकि चीजें दिखाई दे रही हैं यानी कि समझ में आ रही हैं, अगर आप इसे थोड़े से भी गहराई में जाकर के सोचेंगे तो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि चीजें आपकी समझ में आ रही हैं। और अगर समझ में आ रही हैं, चीजें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जब चीजें हमें दिखाई देती हैं तो हम उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, उससे बचने की कोशिश कर लेते हैं। अगर चीजें हमें दिखाई ही नहीं दे रही हैं, समझ में ही नहीं आ रही हैं, तो सीधी सी बात है कि हम तो असहाय हो गए, हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सामने वाला अब जो कुछ करना चाहे करे और हमें उसे भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमें दिखाई दे रही है, हमें चीजें समझ में आ रही हैं। तो क्या ये ज्ञान का बोध नहीं है? और अंधकार में ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो प्रकाश है मूलतः, और हमारे यहां तो कहा भी गया है कि जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रतीक है, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हमारे यहां तो प्रार्थना की गई है, असतो मा सद गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस अंधकार से, अंधकार नहीं, तमसो मा अंधकार नहीं, ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये जो प्रकाश है ये ज्ञान की ओर ले जाने की ही बात है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है, मान करके चलिए कि भय कम होता चला जाएगा। कल मुझे बहुत से स्टूडेंट ने, उनके मेल से मैं बड़े आराम से समझ सकता था कि परीक्षा में भय की बात कही है, कि मुझे परीक्षा में बहुत भय लगता है। तो देखिए, सीधे सीधे आप इस भय को बड़े आराम से अज्ञानता से जोड़कर देख सकते हैं। अगर आपको परीक्षा से भय लग रहा है तो इसका एकमात्र कारण जो हो सकता है वो ये कि आपकी तैयारी पुख्ता नहीं है। जैसी तैयारी होनी चाहिए तैयारी वैसी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब परीक्षा होनी होती है तो थोड़ा बहुत भय, चिंता, आशंका हर को रहती है। किसी भी खिलाड़ी को जाकर के पूछिए, कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, चाहे हमारे विराट कोहली जी ही क्यों ना हो, लेकिन जब क्रीज पर उतरते हैं तो मन में थोड़ा सा वो लगता रहता है कि यार देखो कैसा होगा क्या होगा। लेकिन चूंकि वो अपने आप में परफेक्ट है, लगातार वो अपना अभ्यास करते रहते हैं, तो ऐसा डर भी नहीं लगता कि अरे खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। नॉट एट ऑल। जब तक वो वहां पहुंच नहीं जाते तब तक मन में एक आशंका सी रहती है। परीक्षा के साथ भी यही होता है कि जब तक पेपर नहीं मिल जाता तब तक थोड़ा थोड़ा डर तो लगता रहता है, डर मैं कह रहा हूं, आशंका रहती है, चिंता रहती है। लेकिन अगर आपकी तैयारी पुख्ता है तो आप देखिए कि वो सारी की सारी चिंताएं, सारी की सारी आशंकाएं, आप उसे भय कह लीजिए, एक सेकेंड में छूमंतर हो जाएंगे। तैयारी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भय नहीं लगेगा, यानी कि यदि आपके पास ज्ञान है तो सीधी सी बात है कि भय नहीं है, यानी कि जहां ज्ञान है वहां भय टिक ही नहीं सकता। भय का निवास ही अज्ञानता में होता है। तो मित्रों, आज हम इसी कारण पर बात हम लोगों ने की है। नेक्स्ट में हम लोग और दूसरे कारणों पर आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं थोड़ी सी बात इस पर भी करूंगा कि कैसे हम अपने इन कारणों से मुक्ति पाएं। भय के कारण तो हैं लेकिन उनके निवारण के भी उपायों पर हम लोग बात करेंगे। वक्त हो चला है दोस्तों, अब आप सबसे दो दिनों के लिए इजाजत चाहूंगा। सोमवार को फिर मुलाकात होगी और इस विषय पर ढेर सारी बातें होंगी। अब मुझे अनुमति दें। नमस्कार।